ओम शांति। जैसे कल बताया गया था, मेडिटेशन के तीन स्टेप्स। सबसे पहले आत्मा का परिचय, स्वयं कौन, मैं कौन। और दूसरा कदम है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ, सेकंड स्टेप। आज हम देखेंगे परमात्मा का परिचय, और थर्ड स्टेप है आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध। वो कल के राजयोग सेशन में वो होगा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा की आवश्यकता क्या है। उनके कनेक्शन के बिना क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या परमात्मा की आवश्यकता है हमारे जीवन में? क्यों? What is the need of God for guidance? सच्चे रास्ते पर जाने के लिए गाइडेंस मिलेगा, और एनर्जी, हायर एनर्जी है आत्मा को एम्पावर करने के लिए इस शक्ति की जरूरत है, है ना? हम सभी मानते हैं इस बात को। यस, परमात्मा की आवश्यकता है हमारे लाइफ में, है ना? नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे गाइडेंस के लिए, शक्ति के लिए। सो व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम गॉड? परमात्मा से हमें क्या मिलता है फिर? क्या मिलता है? पावर, पीस, गुण और शक्तियां हमें मिलता है, है ना? इसीलिए आवश्यकता है। हैज गॉड बेनिफिटेड मी एवर? आप अपने जीवन में अगर देखें, कभी परमात्मा से आपको कुछ प्राप्ति हुई है? प्राप्ति हुई है, यस। और अभी क्या लक्ष्य है, और उस प्राप्ति को कैसे हम बढ़ाएं, है ना? तो वो लक्ष्य है, और उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है परमात्मा कौन है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि संसार में परमात्मा के टॉपिक पर बहुत सारा कंफ्यूजन है। हर एक अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अलग अलग मान्यताएं होने के बावजूद भी ये सभी यही कहेंगे कि परमात्मा एक है, राइट? लेकिन परमात्मा अगर एक है तो उनका अस्तित्व भी एक होना चाहिए, उनके आइडेंटिटी भी एक होना चाहिए। जैसे अनाज को, चावल को ही देख लीजिए, चावल की जो अस्तित्व है वो एक है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व एक है, राइट? उसका वैरायटी है चावल के भी, लेकिन उसका अस्तित्व एक है। ऐसे ही परमात्मा का अस्तित्व एक है, लेकिन अलग अलग रूप में पर लोगों ने उनको पुकारना शुरू किया, अपने ही कुछ अंदाजे से, अपने ही विचारों के आधार से उन्होंने परमात्मा को पुकारना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, लेकिन वो आइडेंटिटी क्या है, अस्तित्व क्या है, तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और जानने के बाद फिर उनके साथ हमारा संबंध क्या है, वो कल वो देखेंगे। परमात्मा के बारे में बहुत अलग अलग जो मान्यताएं हैं, जैसे ये सूरदासों की ये कहानी आप सभी ने सुना होगा। पांच जो ब्लाइंड थे उनको हाथी के पास लेके गए, और उनको बताया गया कि आप ये बताओ कि हाथी दिखता कैसे है ना। तो एक जिसने हाथी के सूंड को टच किया तो उसने कहा हाथी जो है वो सांप के जैसा है, और जिसने कान को टच किया तो उसने कहा हाथी पंखे की तरह है, जिसने हाथी के पैर को टच किया उसने कहा हाथी खंभे की तरह है, और जिसने हाथी के पीठ को टच किया उसने कहा हाथी दीवार की तरह है, और जिसने हाथी के पूंछ को टच किया उसने कहा हाथी एक रस्सी की तरह है। और सारी ही पांचों ही चीजों को इकट्ठा अगर करें तो भी जैसे वो कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है, वो ऐसे हाथी कहीं भी नजदीक ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो इंसान की जो बुद्धि है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही हद में है। वो अगर परमात्मा को डिस्क्राइब करने की कोशिश करे वो इतना ही देख सकता है, क्योंकि परमात्मा अथाह है, बेहद है और अनंत है। तो उतना ही देखने के कारण से जितना दिखाई देगा उतना ही वर्णन करना शुरू किया, जैसे हाथी के पूंछ को देखा रस्सी जैसा बोलना शुरू कर दिया। तो जितना देखा जितना अनुभव किया उतना ही वर्णन करना शुरू किया, और सारी बातों को इकट्ठा करेंगे तो भी परमात्मा ऐसे नहीं है। तो लॉजिकली आज हम परमात्मा कौन है वो जानने की कोशिश करते हैं। और सिक्स और सेवेंथ जो लोग हैं, पांच लोग ऐसे हैं, लेकिन छठवे और सातवे जो प्रकार के हैं वो कंफ्यूज्ड है, और कुछ लोग कहते हैं परमात्मा है ही नहीं। अगर हम ये कहें कि मेरा पिता है ही नहीं, पिता माँ बाप के थ्रू ही हम आए हैं, और हम ये कहे कि माँ बाप है ही नहीं तो हम माने नहीं, लेकिन ये जरूर ये नहीं होता ना मानने से कि उनका अस्तित्व नहीं है, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं प्रूफ क्या है परमात्मा के एग्जिस्टेंस का, प्रूफ बताइए तब हम माने, है ना। कुछ बातें ये संसार में प्रूफ से भी ऊपर है, वो महसूस किया जाता है, वो अनुभव किया जाता है, उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, है ना। साइंस के बियॉन्ड है कुछ चीजें, जो साइंस के दायरे में वो चीजें नहीं आती हैं, है ना। तो पांच पैरामीटर्स हैं परमात्मा को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहला पैरामीटर है वो सर्वधर्म माननीय होना चाहिए, एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स। परमात्मा केवल एक धर्म को बिलोंग नहीं करते हैं, है ना, परमात्मा हर धर्म को बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए सर्वधर्म माननीय होना चाहिए, सब पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर ये है वो सर्वोच्च है, हाईएस्ट ऑन हाई। सर्वोच्च है इसीलिए वो जनन मरण के चक्र में नहीं आ सकते, वो किसी के गर्भ में नहीं आ सकते हैं, और वो सभी के माता पिता हैं। उनके कोई माता पिता नहीं है, वो सबके माता पिता है, सभी के माँ है, सभी के पिता है, सभी के टीचर है, सभी के सदगुरु है। और उनके कोई माँ, उन परमात्मा के कोई पिता या परमात्मा के कोई टीचर या परमात्मा के कोई गुरु नहीं हो सकते, राइट। वो सर्वोच्च है, अगर उनके ऊपर कोई माता पिता टीचर सदगुरु है तो फिर वो परमात्मा उनको नहीं कह सकते हैं, वो सर्वोच्च है। और तीसरा पैरामीटर है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी है और सब कुछ जानने वाला। और चौथा पैरामीटर है बियॉन्ड, सब चक्र से वो न्यारा है, सर्वोपरि हम जिसको कहते हैं, सर्व से न्यारा, सबसे बियॉन्ड, माना वो काल चक्र में नहीं आ सकते, वो कर्म के चक्र में नहीं आ सकते, वो ये वर्ल्ड चक्र साइकिल में नहीं आ सकते और जनन मरण चक्र में नहीं आ सकते। क्यों ये चक्र, इन चक्रों में क्यों नहीं आ सकते परमात्मा? क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है वो लिबरेटर है, वो मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। अगर वो खुद इस इन चक्र में है तो वो मुक्त कौन करेगा? अगर हम खड्डे में गिरे हुए हैं, खड्डे से कौन बाहर निकालेगा? जो खड्डे से ऊपर है वही खड्डे से निकालेगा, जो खुद खड्डे में है वो नहीं निकाल सकते हैं, है ना? वो खुद अगर कर्म के चक्कर में है, हमें कर्म के चक्र से मुक्त नहीं करा सकते हैं। वो ऊंच स्थिति में होना बहुत जरूरी है। और जनन मरण चक्र में भी नहीं आ सकते, क्योंकि जनन मरण चक्र में आ गए, हाँ जी, हाँ उसका जवाब आएगा, पूरा सेशन पूरा कर देंगे, फिर आई टेक अप द क्वेश्चन आंसर्स, ओके। तो इसीलिए वो सर्व से परे हैं, तो इसलिए कहते हैं सर्वोपरि है। और पांचवे पैरामीटर है वो सर्वशक्तिमान है, बेहद है, अनंत है और हमेशा दाता है, बेस्टोवर, वो देने वाला है। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, चाहिए कुछ परमात्मा को? वो तो दाता है, देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो ये पांच पैरामीटर है, इसके आधार से हम ये देखेंगे जो जो मान्यताएं संसार में है वो एक एक को हम लॉजिकली समझने की, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मान्यताएं कौन कौन सी है संसार में परमात्मा के बारे में? कोई कहते हैं नेचर इज गॉड, प्रकृति परमात्मा है, इसलिए पांच तत्वों को पूजते हैं, अग्नि को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं, जल को पूजते हैं, भूमि को पूजते हैं, तो पांच तत्वों को पूजते हैं, कहते हैं प्रकृति परमात्मा है। और कोई कहते हैं कण कण में ईश्वर है, गॉड इज इन एवरी पार्टिकल, कण कण में ईश्वर है वो कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, हर इंसान के अंदर परमात्मा के अंश है, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। और कुछ कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर, जो परम ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही ईश्वर, परम धाम को वो ईश्वर कह दिया। और कुछ लोग देवी देवताएं जो हम पूजते आए हैं उनको परमात्मा कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वो बियॉन्ड है हर एक। तो इन सभी बातों को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले जो कहते हैं प्रकृति परमात्मा, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या ये सच हो सकता है? प्रकृति परमात्मा हो सकता है क्या? नेचर भी गॉड? विदाउट नेचर देयर इज नो लाइफ, ओके, लेकिन प्रकृति परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा की रचना जरूर है, इसलिए कहते हैं ये संसार प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का खेल है। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। प्रकृति जो पांच तत्व है, आत्माएं, पुरुष माना आत्माएं जो हम सभी आत्माएं हैं, और परमात्मा परम आत्मा, आत्मा है हम वो परम आत्मा है ना। ये तीन अलग अलग चीजें, परमात्मा पुरुष ना आत्मा आत्माएं और प्रकृति है ना। तो ये तीन चीजों का खेल है ये संसार है ना। तो इसीलिए प्रकृति परमात्मा नहीं हो सकता, क्यों रचना है किस आधार से, क्या बोलेंगे सब सबसे पहला पैरामीटर, क्या सब धर्म वाले मानेंगे इस बात को, नहीं मानेंगे राइट। और दूसरी बात है वो पांचवा पैरामीटर जो था दाता, क्या प्रकृति हमेशा सुख देती है, क्योंकि परमात्मा सुख दाता है, दुख हरता सुख करता कहा जाता है परमात्मा को। परमात्मा कभी दुख नहीं देते, वो सुख का सागर है। दुख जो हम अनुभव करते हैं जीवन में वो अपने कर्मों के कारण से दुख अनुभव करते हैं, परमात्मा दुख कभी देते नहीं है, ये मानते हैं सब। कभी कहते हैं दुख जब जीवन में आ जाता है कहते हैं हे परमात्मा आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो दुख परमात्मा ने दिया आपको हा? नहीं। जब माँ बाप अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते हैं, भले वो बच्चे कितना भी माँ बाप को दुख दे, फिर भी माँ बाप हमेशा दिल से दुआएं देंगे सुखी रहो है ना, कभी दुख नहीं देते। जब इंसान के माता पिता दुख नहीं देख सकते हैं अपने बच्चों को, क्या परमात्मा दुख दे सकते हैं, है नहीं ना। वो सुख का सागर है, वो कभी नहीं दुख देंगे है ना, दुख हरता है। तो प्रकृति प्रकृति कभी कभी दुख मिल जाता है प्रकृति से, तो इसीलिए प्रकृति को परमात्मा नहीं कह सकते। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, प्रकृति बहुत सुंदर है उसकी वो रचना है, उससे भी सुंदर उसका उसकी रचयिता है। सो नेचर इज क्रिएटर और नेचर इज द क्रिएशन ऑफ गॉड। सो नेचर इज नॉट द क्रिएटर, वो रचना रचयिता नहीं है, वो रचना है परमात्मा की। सभी मानेंगे इस बात को राइट दूसरी बात है जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है ना, हर आत्मा के अंदर परमात्मा के अंश है वो कहते हैं। हम यहां समझने की कोशिश करेंगे आत्मा और परम आत्मा इसमें क्या अंतर है। परम माना सुप्रीम, वो ऊपर है ना, आत्माओं के बराबर में है ही नहीं, वो बहुत ही ऊंचे हैं। लेकिन आत्माओं में कैटेगरीज है, सबसे नीचा जो कैटेगरी है वो पाप आत्माओं की है जो यहां दिखाई दे रहे हैं, जो पाप कर्म करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, मर्डर करते हैं, जो भी बहुत जो पाप करते हैं वो पाप आत्माएं हैं जो बहुत पाप करते हैं। उनसे नेक्स्ट कैटेगरी वाले हैं पुण्य आत्माएं जो पुण्य कर्म करते रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, चीजों का दान करते हैं, जो भी है पुण्य कर्म करते रहते हैं वो पुण्य आत्माएं हैं। और उनके नेक्स्ट कैटेगरी है महात्माएं जो महान कार्य करके गए हैं इस संसार में, वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए हैं इस संसार में, वो महात्माएं। और उनके नेक्स्ट कैटेगरी है धर्मात्माएं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने काम किया है, समाज में धर्मों की स्थापना की है, एक समाज को एक नई दिशा दिखाई है आध्यात्मिक रूप से, तो वो है धर्मात्माएं। और उनके और नेक्स्ट कैटेगरी हाईएस्ट कैटेगरी आत्माओं के हाईएस्ट कैटेगरी है देवात्माएं, जिनको हम पूजते आए हैं मंदिरों में, जिनको कहते हैं वो सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्मी। और उनको पूजने से जरूर प्राप्ति होती है, क्योंकि हाईएस्ट कैटेगरी है वो नेक्स्ट टू गॉड है। डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफ को बचाते हैं, जीवन को बचाते हैं डॉक्टर्स, लेकिन गॉड नहीं है। डॉक्टर्स से भी ऊपर है गॉड परमात्मा। ऐसे ही देवी देवताएं दे आर नेक्स्ट टू गॉड, उनसे प्राप्तियां होती है अगर साधना करते हैं तो। लेकिन देवी देवताएं अनेक है, एक नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताएं कहते हैं संसार भारत में, ये मान्यता है 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो जब 33 करोड़ देवी देवताएं हैं तो परमात्मा एक कहां से हुए फिर? राइट? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आत्माएं प्योर है तो फिर इतने सारे जो दुख अशांति है संसार में, जो क्राइम हो रहा है वो क्यों है फिर? कर्म। ओरिजिनली आत्मा प्योर है, जब परमधाम में रहते थे हम सभी तब हम प्योर थे, लेकिन जैसे ही आए जन्म लेकर के शरीर लेकर के जब कर्म करना शुरू किया तो वहां जैसे जैसे कर्म होना शुरू हुआ, पाप कर्म, पुण्य कर्म, महान कर्म, तो वो आत्माओं की कैटेगरी फिर बदलना शुरू हो गया। जैसे सुबह उठ करके मैं शुद्ध कपड़े पहनूं, व्हाइट, पूरी तरह व्हाइट पहन करके मैं बाजार में निकलूं, बहुत काम करूं, पूरा मार्केट में बहुत पूरा पसीने में धूप में सब घूम करके जब रात को मैं घर पहुंचती हूं तो सुबह जैसा कपड़ा था मेरा, रात को ऐसा ही होगा? ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि जो पोल्यूशन, गंदगी, सारा कुछ कुछ थोड़ा बहुत लगा हुआ होगा, इतना शुद्ध नहीं होगा। ऐसे ही आत्माएं जब परमधाम से उतरती है एकदम शुद्ध, लेकिन कर्म के क्षेत्र में कर्म करते 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 कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस लगते लगते वो आत्माओं की क्वालिटी कम होता शुरू हो जाता है। इसीलिए मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन करने से, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से, फिर आत्मा शुद्ध होते होते फिर हम ये देव आत्माओं की कैटेगरी तक पहुंच सकते हैं। ये पॉसिबल है। हम साधारण आत्माएं हैं, अभी बीच में है, पुण्य आत्माएं, पाप आत्मा, कभी का पाप कर्म भी हो जाते, झूठ बोल दिया, थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर दी, थोड़ा बहुत पाप कर्म हमारे से हो जाता है, राइट? हम बीच में है, पाप और पाप आत्मा और पुण्य आत्माओं के बीच में, या थोड़ा बहुत ऊपर, ऐसे इस कैटेगरी में हम सब हैं। हम पुरुषार्थ करके देव आत्माओं की कैटेगरी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा तो एक ही है, राइट? तो ये कैटेगरीज अलग अलग है। देवी देवताएं बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्मा एक है। और परमात्मा जैसे बच्चे होते हैं, माँ बाप और बच्चे, क्या बच्चे अपना ही बाप हो सकते हैं? नहीं, माँ बाप अलग है और बच्चे अलग है, दोनों अलग अलग है। हम परमात्मा नहीं हो सकते, परमात्मा हमारे पिता है, हम अपने पिता नहीं बन सकते, राइट? इसीलिए कहा जाता है लाइक फादर लाइक सन। सन शोज फादर कहा जाता है। कुछ कैटेगरीज जो मात पिता के हैं वो बच्चों में होता है, लेकिन सब कुछ एक जैसे नहीं हो सकता। तो इसलिए आत्मा और परमात्माएं, वो परमात्मा और आत्माएं वो अलग अलग होगा। और ये भी कहेंगे कि अगर मेरे अंदर परमात्मा के अंश है, ये भी कहते हैं ना हम परमात्मा के अंश है, उसके लिए क्या कहेंगे? हम परमात्मा के अंश है या परमात्मा के वंशज है? अंश वंश है, अंश वंश है। अंश माना एक एप्पल अगर ले, एप्पल के छोटे छोटे टुकड़े अगर करते हैं, वो छोटे से छोटे टुकड़े में भी एप्पल का ही टेस्ट है, राइट? कितना भी छोटा टुकड़ा हो, तो परमात्मा के अगर अंश है हम, तो परमात्मा की पूरी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। हम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते, तो वो ऐसा हो नहीं रहा है, तो परमात्मा के अंश हम नहीं हो सकते। और वंश माना जैसे आपके बच्चे, राइट? आपके कुछ क्वालिटीज आपके बच्चे में है, लेकिन कार्बन कॉपी नहीं है, राइट? जीन्स को थोड़ा बहुत गया है। ऐसे परमात्मा के कुछ क्वालिटीज हमारे में है, परमात्मा हमारे पिता है, कुछ क्वालिटीज हमारे में है, वो कनेक्शन है, अंश नहीं है, वंश है। परमात्मा हमारे पिता, माँ, टीचर और सदगुरु है, है ना? और तीसरी बात है, कहते हैं कण कण में ईश्वर, इसके लिए क्या कहेंगे? हर पार्टिकल में, हर कण में परमात्मा है, इसके लिए क्या कहेंगे? जब लिविंग बींग, ह्यूमन बींग्स के लिए ही हम कहते हैं, आत्माओं के लिए ही कहते हैं, आत्माओं के अंदर परमात्मा नहीं हो सकते, ये नॉन लिविंग बींग है, जड़ चीजें हैं, जड़ चीजों में परमात्मा हो सकते हैं? परमात्मा तो चैतन्य है, जड़ चीजों में परमात्मा हो सकते कि नहीं हो सकते? क्रिएशन है, सर्वव्यापी के तो परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापक है परमात्मा, उसके लिए क्या कहेंगे? कण कण में भगवान या सर्वव्यापी? सर्वव्यापी है। ओके, सूरज है, सूरज एक जगह पर है, लेकिन उसकी किरणें सब जगह पर पहुंच रही है, तो इसके लिए फिर हम ये कहेंगे सूरज सर्वव्यापक है? कहेंगे सूरज की जगह एक है, लेकिन उसकी रोशनी सब जगह पहुंच रही है। अगर हम खिड़की दरवाजा बंद करके बैठे, अगर हम ये कहें सूरज है ही नहीं, वो भी राइट नहीं है, है ना? तो परमात्मा का अस्तित्व और जगह एक है, और उनकी किरणें, उनकी जो अनुभूति हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। वो ऐसा पर्टिकुलर चीज, जगह नहीं है, मंदिर में, मस्जिद में या फिर चर्च में ही जाकर के परमात्मा को अनुभव कर सकते, ऐसी बात नहीं है। कहीं भी, घर में भी बैठ करके परमात्मा की अनुभूति आप कर सकते हैं। लेकिन कण कण में ईश्वर जिसको कह कह दिया, क्यों कहा ऐसे? क्योंकि द्वापर युग से लेकर के जब पाप कर्म बढ़ना शुरू हुआ, तब एक प्रकार से डर बिठाने के लिए लोगों को, परमात्मा देख रहे हैं आपको, तो इसीलिए वो डर बैठेगा, तो फिर वो पाप कर्म नहीं करेंगे। तो कहेंगे ना बच्चों को, देखो टीचर आ गया, प्रिंसिपल आ जाएंगे अभी। हाँ, माँ बाप है तो फिर वो ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो अगर आत्माओं को यह है कि परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा सब जगह पर है, तो फिर वो पाप कर्म कम हो जाता है। और दूसरी बात है वो भावनात्मक है। माना यहां बैठ करके अगर फोटो देखे तो उनसे हम अनुभव कर सकते, ऐसा नहीं कि फोटो में वो मूर्ति में वो उनका अस्तित्व है, लेकिन उनके अनुभव हम वो देख करके कर सकते। जैसे कोई भी महान आत्माओं के फोटो देखेंगे तो उनकी वाइब्रेशन, उनका अस्तित्व हम महसूस करते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो फोटो में वो व्यक्ति है ना। तो ऐसे ही कहीं भी बैठ करके परमात्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। द्वापर युग में भक्ति में शक्ति थी, भक्ति में शक्ति थी उस समय, तो फिर वो अनुभव होता था उनको। ऐसा नहीं कि नहीं होता था, होता था। जैसे कालिदास की कहानी आपने सुनी होगी। कालिदास जी क्या थे, वो एकदम जैसे उनको कुछ नहीं समझ, एकदम बुद्धू, जैसे कुछ वो कुछ नहीं समझ में आता था, एकदम इग्नोरेंट बहुत ही। तो वो रिवेंज करना लेना था मिनिस्टर्स को, तो रानी राजकुमारी के साथ उनकी उनकी शादी करा दी गई। फिर रानी को बहुत गुस्सा आया, बहुत, तो वो काली के मंदिर में ले जा करके इतनी प्रार्थना की, इतनी आराधना की, तो फिर काली खुद प्रकट होकर के ओम लिखा जीभ के ऊपर, तो वो उनको ज्ञानोदय हो गया। तो तब से लेकर के उनको कालिदास कहा गया, है ना, ज्ञानोदय हो गया। तो भक्ति में शक्ति थी उस समय। तो ये अनुभूति, ये सब भक्ति में, भक्ति मार्ग में ये चला आया है। तो लेकिन ये जरूरी ये नहीं है कि फिर ये सभी देवी देवताएं पर, वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिफरेंस हमें समझने की जरूरत है। शक्ति है देवी देवताओं की आराधना में, लेकिन उन्होंने भी शक्ति कहां से प्राप्त किया? देवियों को कहा जाता है वो शिव की शक्तियां हैं, है ना। उन्होंने भी शक्ति लिया शिव से। अगर किसी के भी हम देखेंगे, राम जी भी जब रामेश्वरम जाना, वहां रामेश्वरम और श्रीलंका जाना था, तो शिव की आराधना की, उनसे शक्ति ली, फिर उन्होंने ये। और गोपेश्वर में यह कहा जाता है श्री कृष्ण ने भी शिव की आराधना की, तो वो वहां तक आएंगे, वहां तक पहुंचते हैं। फिर नेक्स्ट बात है ब्रह्म ही ईश्वर, परम धाम। तो ब्रह्म परम धाम जो है वो सभी आत्माओं का निवास स्थान है। जैसे कल हमने देखा आत्माओं का निवास स्थान वहां, इसलिए कहते हैं ना कि अकेले आए थे, अकेले जाना है। तो परम धाम हम सभी का निवास स्थान है, वह सेवेंथ वर्ल्ड है, या ब्रह्म महातत्व है, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, या निर्वाण धाम कहा जाता है इसको। वो ईश्वर का निवास स्थान है, लेकिन ब्रह्म ही ईश्वर नहीं हो सकता। और कहीं भी कभी भी किसी को याद करते हैं, कहते हैं ये फलाने व्यक्ति का घर है, वो घर याद करने से उस व्यक्ति की याद आती है। ऐसे ही परम धाम आत्माओं का निवास स्थान और परमात्मा का निवास स्थान है। निवास स्थान को याद करके परमात्मा को भी हम याद कर सकते हैं। इसलिए जैसे कहा गया था, देवी देवताएं क्या परमात्मा है? देवी देवताएं जो है सर्वोच्च आत्माओं की कैटेगरी है। और आत्मा निराकार या नाम रूप से न्यारा कहा जाता है। परमात्मा कुछ लोग मानते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा माना वो कोई रूप नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ज्योति बिंदु निराकार। जैसे ज्योति को कहा जाता है, ज्योति जब स्टार देखते हैं उसको भी निराकार कहते हैं, पॉइंट देखते हैं तो पॉइंट को भी निराकार कहा जाता है। तो इसीलिए वो भी। और सर्वधर्म वाले क्या कहते हैं? जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग ज्योतिर्लिंगम है या 12 ज्योतिर्लिंगम की यात्रा लोग करते हैं, रामेश्वरम, गोपेश्वर या फिर महाकालेश्वर, अमरनाथ, ये सभी जो 12 ज्योतिर्लिंगम है हिंदू धर्म में शिव की आराधना करते, शिव माना पॉइंट ऑफ लाइट, शिव माना कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी। तो हिंदू धर्म में शिव की आराधना पूजा करते आए हैं। और क्रिश्चियन धर्म में कहा जाता है गॉड इज लाइट, वी आर द क्रिएशंस ऑफ गॉड। और जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड द सन ऑफ गॉड। हमेशा जीसस क्राइस्ट ने यही कहा गॉड इज लाइट, उन्होंने कभी नहीं कहा आई एम गॉड। इसीलिए चर्चेस में कैंडल्स जलाया जाता है, मंदिरों में दिया जलाया जाता है, लाइट का प्रतीक। और मुसलमान धर्म में अल्लाह नूर है कहते हैं, वो भी निराकार परमात्मा को ही मानते, भले अल्लाह कहेंगे नाम अलग है लेकिन रूप वही है, ज्योति नूर, अल्लाह नूर है कहते हैं। और साईं बाबा ने भी कहा कि सबका मालिक एक है। गुरु नानक जी ने कहा एक ओंकार निराकार, वो भी एक निराकार परमात्मा के तरफ ही इशारा किया है ना। तो जो भी धर्म स्थापक आए तो एक निराकार परमात्मा के तरफ ही इशारा किया, चाहे उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, अल्लाह नूर है, एक ओंकार निराकार या शिव, सभी एक ज्योति के तरफ इशारा किया है ना। कुछ लोगों का जो नाम है, अगर अमीर चंद होता है ये जरूरी नहीं है कि वो अमीर हो, जिसका नाम शांति देवी हो जरूरी नहीं है कि वो शांत रहे, लेकिन शिव, शिव का नाम है सदा शिव, सदा कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी। और 12 ज्योतिर्लिंगम के नाम अगर देखा जाए, अमरनाथ, वो हमेशा उनके गुणवाचक या कर्तव्यवाचक नाम है। अमरनाथ जो अमर है, पशुपतिनाथ पशुओं का भी पति, महाकालेश्वर कालों का भी काल, महाकालेश्वर, रामेश्वरम जिसने राम का भी ईश्वर, गोपेश्वर कृष्ण का भी ईश्वर। तो इधर ईश्वर या नाथ से शिव का नाम जुड़ा जाता है, ईश्वर माना सर्वोच्च, नाथ माना मालिक है ना। तो शिव का कर्तव्यवाचक नाम है वो, और उसको बोला नाथ भी कहा जाता है, बबुल नाथ भी कहा जाता है। बॉम्बे में बबुल नाथ मंदिर है, कांटों का माना हम सभी आत्माएं जब दुख देते हैं कांटे बराबर हैं, उनके भी बबुल, उनके नाथ है, वो भी मालिक है ना। पाप कटेश्वर, पापों को काटने वाला, पापों से मुक्त कराने वाला परमात्मा पाप कटेश्वर। तो इसीलिए अलग अलग जो ज्योतिर्लिंगम की अलग अलग धर्म की बातें जो हमने अभी देखा, तो इसीलिए वो परमात्मा जो निराकार है वो सर्वज्ञ है। जो 5 पैरामीटर्स हम देख रहे थे, सबसे पहले पैरामीटर है सर्वधर्म माननीय, तो वो पॉइंट ऑफ लाइट, अलग अलग नाम से भले पुकारे लेकिन रूप एक ही है, तो सर्वधर्म माननीय हो गए। और दूसरी बात थी सर्वज्ञ, वो इसीलिए यह 3 लाइन जो निकालते हैं, त्रिलोकी नाथ या तीनों कालों को जानने वाला, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाला त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। इसलिए बिल पत्र भी चढ़ाया जाता है उनको त्रिकालदर्शी के रूप में। त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, गॉड GOD का मतलब है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर का गायन है, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कहा जाता है, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। और फिर हेब्रू में ये कहा गैब्रियल माइकेल और इसराफिल कहते हैं, वो भी उस धर्म में भी क्रिएटर सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर, स्थापना पालना विनाश परमात्मा के द्वारा होता है ये मानते। त्रिनिटी एंजल्स कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, परमात्मा सत्य है, वो सच है, और शिवम है, बिंदु है और बहुत सुंदर है। सुंदर माना कोई भी उनके अंदर नेगेटिविटी वेस्ट या कुछ नहीं है, बहुत ही सुंदर है। इसलिए पांचों ही पैरामीटर्स ज्योतिबिंदु को अप्लाई होता है, एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स, पांच सभी धर्म वो मानते हैं। और हाईएस्ट ऑन हाई सर्वोच्च परमात्मा है। परमात्मा निराकार होने के कारण से वो जनन मरण चक्र में नहीं आते, तो फिर वो सर्वोच्च हो गए, सर्वज्ञ हो गए, और काल चक्र या जनन मरण चक्र में वो नहीं आते क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट है वो। और फिर वो हमेशा दाता और बेहद है, इसलिए परम आत्मा है हर हम सभी आत्माएं हैं। जैसे कहते हैं ना, जो परम पिता है, पिता के जैसे ही संतान होते, उनके अंश होते, आत्मा जैसे ज्योति बिंदु है, आत्मा जैसे ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ऐसे ही ज्योति बिंदु है। लेकिन अंतर क्या है आत्मा और परमात्मा में, अंतर क्या है आत्मा और परमात्मा है? आत्माएं हद में है, थोड़े हैं, परमात्मा बेहद है, सर्वशक्तिमान है, वो सागर है और आत्माएं गागर है। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक है, यही अंतर है। रूप एक है, जैसे आत्मा ज्योति है परमात्मा भी ज्योति है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनके जो प्रकाश है, उनका जो लाइट है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है, वो ना आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, विराट रूप को, रूप का साक्षात्कार हुआ, तो अर्जुन ने कहा कि बस करो प्रभु, बस करो, मैं नहीं देख सकता। लेकिन परमात्मा की शक्ति जो है वो नहीं असहनीय नहीं है, लेकिन चांदनी की जो रोशनी होती है बहुत ही सूदिंग, जितना हम उस चांदनी की रोशनी में, बहुत अच्छा लगता है ना बैठ करके, तो ऐसे बहुत सूदिंग, बहुत पावरफुल है, असहनीय असहनीय नहीं हो सकता। प्रकाश जरूर है लेकिन बहुत सूदिंग है और बहुत शक्तिशाली है ना? ओके, अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेते हैं, फिर मेडिटेशन में बैठते हैं। जी शिव पॉइंट ऑफ लाइट, शिव माना पॉइंट ऑफ लाइट है, तो पॉइंट को हम पूज नहीं सकते हैं, इसीलिए वो आकार दिया गया शिव लिंगम कहा जाता है। तो वो लिंग का आकार दे करके पूजना शुरू किया द्वापर युग से, तो इसीलिए वो सारा। अब अगर पूज उसके अगर डिटेल अगर चाहिए, जैसे मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहती थी, आपने पूछा तो ठीक है। जी हाँ, तो काल चक्र के साथ इसमें समझेंगे तो फिर वो समझ में आएगा ये सब बातें। अगर शिव की पूजा में देखते हैं, वो बहुत ही साधारण शिव के ऊपर अक्के फूल चढ़ते हैं और बहुत थामझाम नहीं होता उनके, बहुत ही सिंपल पूजा है परमा शिव का। और देवी देवताओं की पूजा तो बहुत ही थामझाम होता है उनका। तो परमात्मा सिंपल है, इसीलिए बबुलनाथ कहा जाता है, वो बहुत ही सिंपल है। और शिव और शंकर के अंतर आपने पूछा, शिव परमात्मा है, शंकर देवता है, वो अंतर है। शंकर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं माना उनके ऊपर कोई तो है। अगर परमात्मा है वो तपस्या नहीं कर सकते, तपस्या करते ही है शक्ति पाने के लिए, सशक्त बनने के लिए। शंकर देवता है और शिव परमात्मा, ये अंतर है। हाँ जी, हाँ, उनको मिला दिया गया। जी हाँ जी, वो सदा शिव कहते हैं उनको, वो हमेशा इन्फिनिटी ऐसे ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई थे तो उन्होंने उनको दिया तो वो ऐसे बन गए। स्वयं भू कहा जाता है, स्वयं हुआ। तो अगर उसके अगर हम कहेंगे यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है, तो उसके अंत में जाने की कोशिश करेंगे ना, वी वॉन्ट रीच एनीवेयर, राइट। हाँ जी, जी इसीलिए कहते हैं देवता है। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा मिक्स्ड हो गया। अगर ये पैरामीटर्स को अप्लाई करते हैं, कृष्ण भगवान अगर हम कहेंगे तो क्रिश्चियंस मानेंगे, मुस्लिम्स मानेंगे, सिख लोग मानेंगे, तो वो हिंदू धर्म की मान्यताएं चली आई हैं। तो इसलिए बहुत सारे कंफ्यूजन, एक जैसा लगता है कि तालाब में पत्थर डल गया, अभी बहुत सारे रिपल्स जरूर आएगा। लेकिन सिंपल अगर हम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है परमात्मा के टॉपिक को लेकर के इस संसार में, अगर हम सिंपल रखते हैं कि पांच पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए क्या अप्लाई होता है, क्या अप्लाई नहीं होता है, और फिर थोड़ा अनुभव करने की कोशिश करें। जितना आप अनुभव करना शुरू किया, अब अनुभव होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे 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 आपके जो प्रश्न है उसके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जी जी जी, ह्यूमन क्रिएटेड, वो इंसानों ने क्रिएट किया है धर्मों को, परमात्मा ने नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, इंसानों ने कहा है, अगर इंसान ने कहा है वो फैक्ट नहीं हो सकता, राइट। इंसानों ने कहा है ये, ठीक है, ओके। शंकर जी ध्यान में है, शिव जी ध्यान में नहीं है। हाँ जी, है ना, तो चलिए। हाँ हाँ जी, आत्मा को भी आकार नहीं है। आत्मा किसको कहते हैं? पॉइंट ऑफ लाइट। नहीं, ओके ये इंपॉर्टेंट, लेकिन वो कर्म के लेसन में वो आएगा। वो परमात्मा डिसाइड नहीं करेंगे आपके कर्म, यू हैव द फ्री विल, आपको डिसीशन दे दिया है परमात्मा ने, आपको जैसा जीना है जी लीजिए, लेकिन मार्गदर्शन देंगे, गाइड करेंगे परमात्मा बस। जैसे कहेंगे ना कि ये बस बेटा ये अच्छा मार्ग है, ये सच है ये झूठ है, ये अच्छा है ये बुरा है, वो बताएंगे जरूर आपको, लेकिन आपको चूज करना है किस मार्ग पर आपको चलना है। वो परमात्मा डिसाइड नहीं करेंगे आपके लिए, आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको परमात्मा ने फ्री विल दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, ज्ञान देंगे आपको लेकिन आपके कर्म में वो इंटरफियर नहीं करेंगे, राइट ओके। हाँ जी, हाँ नहीं, वो केवल वहां है जो भी कर, जैसे सूर्य है, कहा सूर्य है, खिड़कियां खोलेंगे तो वो सूर्य अलाव करेंगे तो फिर हम सूर्य के किरणों को ले सकते हैं। हम खिड़कियां बंद करके बैठेंगे वो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे तो हम एनर्जी ले सकते हैं, कनेक्ट नहीं होंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा कि ये परमात्मा का यथार्थ परिचय इसीलिए चाहिए, तो कनेक्शन जोड़े तो फिर हम एनर्जी ले सकते हैं, है ना? पॉइंट है, लेकिन उनकी एनर्जी इन्फिनिट है, वो एनर्जी कहीं भी पहुंच सकता है, ऐसे लिमिटेड। जैसे ह्यूमन एनर्जी जो है वो ओरा लिमिटेड है, मैं यहां बैठी हूं, मेरा ओरा स्पिरिचुअल साधना के आध्यात्मिक साधना के आधार से मेरी ओरा बढ़ सकता है, बढ़ करके कितना बड़ा होगा, राइट? लेकिन परमात्मा की जो शक्ति है वो इस यूनिवर्स में बेहद है, कहीं भी पहुंच सकती है, सब जगह पर वो है पॉइंट, लेकिन उनकी एनर्जी कहीं भी बैठ करके उसको महसूस कर सकते हैं, वो लिमिटेड नहीं है। हाँ हाँ, उसी के लिए अभी अनुभव करेंगे, प्रैक्टिस करके वो रियलाइज कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हाँ जी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो इसीलिए सार में परमात्मा का परिचय, सदाशिव, जेहोवा, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी हम नाम पुकारते हैं, फॉर्म है उनका, रूप है ज्योति, लाइट, नूर, और क्वालिफिकेशन वो पांच पैरामीटर्स जो हमने देखा, और एड्रेस है परमधाम, पार ब्रह्म में रहने वाला परमधाम, निर्वाण धाम या हेवनली अबोर्ड जो कहते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, परमात्मा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। परमात्मा का एक ही काम है, वो पतितों को पावन बनाते हैं बस, वो ज्ञान दे करके पतितों को पावन बनाते हैं, वो और काम नहीं है परमात्मा का। परमात्मा का ये काम नहीं है कि मुझे नौकरी दिला दे, मुझे करोड़पति बना दे, मुझे बच्चा दिला दे, तो ये काम परमात्मा का नहीं है, है ना? परमात्मा का एक ही काम है, पतितों को पावन बनाना। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ करके जितना आत्मा पवित्र बनती जाएगी, आत्मा की शक्तियां बढ़ती जाएगी, फिर हमारे अंदर क्लैरिटी, मन और बुद्धि में वो क्लैरिटी आती जाएगी, फिर हमारे कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा, है ना? केवल हम पावन बनते जाए लेकिन कर्म श्रेष्ठ ना हो, वो फिर कोई फायदा नहीं है। परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ करके आत्माएं पवित्र, शुद्ध, पावन बनती जाती है और कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, वो कर्म के, हाँ, आपके ये जो प्रश्न है, आप समझ गई आपका प्रश्न। आपका प्रश्न इस टॉपिक के साथ कनेक्टेड नहीं है, कर्म के साथ कनेक्टेड है। तो आपका प्रश्न उत्तर दूंगी सेशन के बाद, ठीक है। अभी मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करते समय हम तीन बातों को ध्यान में रखते हैं। एक तो आत्मा का परिचय मिल गया, दूसरा परमात्मा का परिचय मिल गया, आत्मा ज्योति, परमात्मा ज्योति। और तीन बातों को ध्यान में रखना है इसमें। एक है पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, दूसरा है विजुलाइजेशन। जैसे यहां बैठे अगर आपको कहे कि आप अपने घर के लिविंग रूम में पहुंच जाइए, तो उसको विजुलाइज करना बहुत इजी है। हर एक के अंदर वो ताकत है विजुलाइज करने की, हर आत्मा के अंदर है। तो पहली बात है थॉट पावर यूज करते हैं, संकल्प की शक्ति। दूसरा है विजुलाइजेशन की शक्ति को यूज करते हैं। जब हम कहेंगे कि मैं आत्मा ज्योति हूं, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं, थॉट भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं भ्रुकुटी के बीच में वो प्रकाश को देख भी रही हूं बुद्धि के आंखों से, है ना। ये प्रैक्टिस करना है मेडिटेशन करते समय। केवल सोचना नहीं है, विजुलाइज भी करना है। आत्मा बीच में, ज्योति बिंदु, क्या मैं अपने आप को देख सकती हूं? आप देख सकते हैं आत्मा को अपने भ्रुकुटी के बीच में? देख सकते हैं? देखने की कोशिश करें। भ्रुकुटी के बीच में देख सकते हैं? यस और नो? हाँ, देख सकते हैं। और तीसरी बात है महसूस करना, फील करना, वो शक्ति को महसूस करना। भ्रुकुटी के बीच में वो प्रकाश, ज्योति देखते हुए क्या महसूस कर पा रहे हैं? ये तीनों ही शक्तियों को हम यूज करेंगे आज मेडिटेशन करते समय। संकल्प की शक्ति, विजुलाइजेशन की शक्ति, महसूस करने की शक्ति। ये तीनों को साथ साथ यूज करते हुए आज हम मेडिटेशन करते हैं। चलिए, सीधा बैठ जाए। आप अपने बैकबोन को सीधा रखें। एक और बहन यहां बैठेंगे। धीरे धीरे आप अपने मन और बुद्धि से आसपास के वातावरण से डिटैच करते जाएं और पूरी तरह भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करें। मन की स्क्रीन पर अपने आप को देखें, एक चमकता हुआ अजब सितारा। देखने के साथ साथ महसूस करें कि सचमुच वो चमकता हुआ अजब सितारा मैं आत्मा हूं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रुकुटि के मध्य में बैठकर इस शरीर को चला रही है। मैं चैतन्य शक्ति हूं। इस शरीर को प्राण प्रदान करने वाली चैतन्य शक्ति, ये शरीर मेरा वस्त्र है। इसको धारण कर इस कर्म क्षेत्र पर मैं कर्म कर रही हूं। इस शरीर को यूज करते हुए अलग अलग कर्म करती हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटि के मध्य में बैठकर इन आंखों द्वारा देखती हूं। इन आंखों द्वारा बाहरी जगत के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ता है। मैं आत्मा इस गुफा में बैठकर कानून द्वारा मैं सुनती हूँ। इस संसार के आवाजों को मैं महसूस कर सकती हूँ। मुख द्वारा मैं अपने विचारों को प्रकट कर सकती हूँ। ये सब कर्म मैं आत्मा कर रही हूँ इस शरीर के द्वारा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। शांति के प्रकंपन पूरे शरीर में फैल रहा है। अंग अंग मेरा शीतल होता जा रहा है। आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में फैल रहा है। धीरे धीरे मन और बुद्धि से मैं आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट करती हूँ। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। चलिए मन और बुद्धि को अपने घर परम धाम की तरफ ले चले। पांच तत्वों से भी बाहर वह अनंत अखंड शांति है जो मुझ आत्मा का निजी घर परमात्मा का घर मेरे पिता का घर सर्वशक्तिमान परमात्मा उनकी सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा पिता के उनसे भरपूर होती जा रही हूं। शांति के सागर में आत्मा उनके अति प्रिय संतान शांत स्वरूप ओ प्रेम के सागर प्रिय संतान प्रेम स्वरूप हूं। वो सदा कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी है। ज्ञान का सागर सर्वज्ञ मैं अपने परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर उनके गाइडेंस ले रही हूं। उनकी मार्गदर्शन ले रही हूं। आई एम जस्ट अलाउिंग हिज एनर्जी टू फ्लो विद इन मी। पतित पावन की किरणें मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। उनकी शक्तियां मुझ मेरे अंदर बह रही है। और मैं शुद्ध पवित्र पावन होती जा रही हूं। सारे बोझ चिंताएं परमात्मा अर्पण करती जा रही हूं। मैं आत्मा लाइट बनती जा रही हूं, हल्की होती जा रही हूं। परमात्मा का ज्ञान शक्ति और प्रेम मेरे अंदर बहता जा रहा है। जस्ट फ्लोइंग विद इन मी। और मैं उसको ग्रहण करती जा रही हूं, अब्सॉर्ब करती जा रही हूं। अपने अंदर भरती जा रही हूं। अपने अंदर भरते हुए धीरे धीरे वापस इस कर्म क्षेत्र पर मैं आती हूं। और इस संसार में इन वाइब्रेशंस को फैलाती हूं। निरंतर मैं अपने पिता परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूं। परमात्मा से ले रही हूं और इस संसार को दे रही हूं। निरंतर परमात्मा से ले रही हूं, इस संसार को दे रही हूं। शांति की शक्ति परमात्मा से ले रही हूं और संसार को दे रही हो। हर आत्मा शांत शीतल हो जाए। परमात्मा से प्रेम की शक्ति ले रही हूं और संसार को दे रही हूं। हर आत्मा के प्रति आत्मिक स्नेह जागृत कर रही हूं। कोई भेदभाव ईर्ष्या द्वेष सब कुछ मिटता जा रहा है। हर आत्मा के प्रति रूहानी स्नेह, सभी आत्माएं एक परमात्मा के संतान, कोई जाति देश जेंडर कोई भेदभाव नहीं। हम धरती के सितारे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम सभी एक पिता परमात्मा के संतान, आपस में एक परिवार के हैं। ओम